ओम शांति, ओम शांति। आज का जो विषय है वो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अनुभव करते हैं। गुस्सा सभी को आता है, कोई कह सकता है मुझे गुस्सा नहीं आता है? जो समझते हैं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है वो हाथ उठाएं, कोई भी नहीं। तो कम या ज्यादा हो सकता है, किसी को कम आता हो किसी को ज्यादा आता है, लेकिन गुस्सा सभी को आता है। और इसीलिए कहा एंगर इज ओमनी प्रेजेंट, यानी सब स्त्री पुरुष बच्चे जाति धर्म संप्रदाय देश संस्कृति राजनीति व्यवसाय के लोग गुस्सा करते हैं। और इसीलिए कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन समाचार पत्रों में या टेलीविजन में या रेडियो में कोई हिंसा या हत्या का समाचार ना हो। लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या युद्ध ये दुनिया में कहीं ना कहीं होता ही है। एक घटनाएं नहीं कई घटनाएं होती हैं। एक अभी कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था, एक इंजीनियर उनकी पत्नी उनको मायके जाना था और उनका 7-8 महीने का छोटा बच्चा था उसकी गोदी में, तो वो मना कर रहे थे जाने के लिए और पत्नी जाना चाहती थी। दोनों के बीच में उस बात को लेकर के कहा सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई, वो पति को इतना गुस्सा आया कि उसने जो उसकी गोद में 8 महीने की बच्ची थी उसको छीना उससे और उठा के फेंक दिया। अब उसको फेंका तो तुरंत उसको ले गए अस्पताल में, अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि बेहोश है और थोड़े समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए मतलब बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन गुस्से में हम कहते हैं इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं और घटना हो जाने के बाद फिर पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो हम वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इतने अतीत तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी इंसान बेकाबू हो जाता है गुस्से में और ऐसे काम कर जाता है कि जिसका उसे जिंदगी भर कहेंगे कि पश्चाताप करना पड़ता है या जिंदगी भर उसका फल भोगना पड़ता है। तो ऐसी कितनी ही घटनाएं न्यूज़पेपर में आए दिन छपी होती हैं जो लोग गुस्से में आपस के थोड़े से गुस्से में लेकर के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। गुस्से के लिए कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है कि ये थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, उसके मुंह में जो आता है वो बोलते हैं और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं गुस्से में कई बार जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाता है लेकिन सुनने वाला जीवन भर नहीं भूल पाता है और संबंधों पर उसका असर आता है, संबंधों में प्रेम खत्म हो जाता है, कई बार संबंध टूट भी जाते हैं उसकी वजह से। एंगर इज सेल्फ पैरालाइजिंग इमोशन, गुस्सा जो है वो व्यक्ति को असहाय कर देता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है बिल्कुल। और ये एक एसिड की तरह है, जैसे एसिड को जिस पात्र में डालते ना उस पात्र को ही वो नष्ट करता है, ऐसे ही जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, वो दूसरों को नुकसान बाद में होता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन गुस्सा करने वाले को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। गुस्से से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, समस्याएं और बढ़ जाती हैं। आज तक आपने अपनी समस्या को गुस्से से हल होते हुए देखा है? पता चलता है गुस्सा करने के बाद और ही समस्या बढ़ गई। इट मेक्स यू पुअर रोल मॉडल फॉर अदर्स टू कॉपी, यानी आप कभी भी दूसरों के आदर्श नहीं हो सकते। जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो कभी भी किसी का आदर्श नहीं बन सकता। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज की तरह है, जैसे संक्रामक रोग लग जाता है ऐसे ही गुस्सा करने वाले के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आप भी कब गुस्सा करने लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। गुस्सा हम चिड़चिड़ेपन से, जैसे कहा नाराज की में आना, चिड़चिड़ा हो जाना या कूड़ना, ये इसके जो कहेंगे हल्के रूप हैं, से लेकर बेकाबू गुस्से तक, यानी जोर जोर से चिल्लाना, गाली देना, मारना, पीटना, चीजें उठा के फेंकना, और सबसे अति है किसी की हत्या कर देना, गुस्से में आकर के किसी को जान से ही मार डालना, ये सब गुस्से की स्टेप्स हैं। तो हम तीन तरह से गुस्से की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक है एग्रेसिव वे, एग्रेसिव वे माना हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। किसी ने कोई ऐसा किया जो मुझे गुस्सा दिलाने वाला है, हम सोचते ही नहीं हैं कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं एग्रेसिव वे। जैसे कहा चिल्लाना, मारना, पीटना, चीजें फेंकना। एक महिला थी, वो गई बाजार, बाजार से उसे रसोई का सामान लाना था, वो खरीद के लाई, घर में लौटी और उसने जो उसके हाथ में पर्स था उसको उसने टिपोई पर रख दिया, सोफे के सामने टिपोई होती है। घर में 2 साल का बच्चा था, वो बच्चा खेल रहा था, माँ तो वो पर्स वहां रख करके रसोई में चली गई, सारा सामान रसोई में जो सेट करना था। लेकिन वो बच्चे ने देखा तो बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, तो वो गया वहां, उसने वो पर्स उठाया, उस पर्स को खोला और उसमें नोट थे, तो 500 रुपए का नोट उसने निकाला और वो नोट से खेलने लगा, फाड़ दिया उसने, उसको क्या पता ये 500 रुपए का नोट है। अब माँ जब रसोई से बाहर निकली तो देखा पर्स खुला पड़ा है, है ना, सारे नोट बिखरे हुए हैं और वो 500 रुपए का नोट का उसने बिल्कुल फाड़ दिया है। तो बिना सोचे समझे अब इतना गुस्सा आया उसको कि उसने जोर से एक थप्पड़ मारा, उसको क्या हुआ, वो थप्पड़ मारने से बच्चे का सर फर्श से टकराया, बच्चा बैठा था, जोर से थप्पड़ मारा ऐसे टकराया, उसी समय बच्चा जो है वो थोड़ा सा रोया और फिर बेहोश हो गया, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरा दिन वहां उसका इलाज चला एक दिन, और 5,000 रुपए का खर्चा आ गया। तो 500 रुपए के नोट के पीछे कितना नुकसान हुआ। अब यहां पर ये एग्रेसिव वे है, बिना सोचे समझे उसने उसको थप्पड़ मारा। इसमें एसर्टिव वे जो दूसरा तरीका है वो एसर्टिव वे, यानी हम थोड़ा सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ तो उसको हम थोड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहां वो ये सोच सकती थी कि गलती किसकी है, गलती किसकी है, इसमें माँ की गलती है ना, उसको पता है कि घर में छोटा बच्चा है और अगर मैं पर्स यहां रखूंगी तो बच्चा हाथ लगाएगा ही लगाएगा, तो उसको वहां पर्स रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा चलो रख भी दिया, बच्चे ने नोट निकाल भी दिया और फाड़ भी दिया, तो ना समझ है उसको, थोड़ी मालूम है कि मैं 500 रुपए का नोट फाड़ रहा हूं। तो अगर वो थोड़ा भी सोचेगी इस बात को तो वो ऐसा गुस्सा नहीं करेगी। तो ये है एसर्टिव वे, यानी जब हम परिस्थिति को थोड़ा समझते हैं और समझ करके फिर रिस्पॉन्स करते हैं। नॉर्मली जब हमें गुस्सा आता है हमारे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। फिर तीसरा तरीका है सप्रेस करना। कुछ लोग जब अपने अधिकारी के सामने हैं, यानी जो भी हमसे बड़े हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में हैं, उनके सामने एकदम से जवाब नहीं दे सकते, उनके जो भी कही हुई बातें हैं या जो भी वो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उससे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम बोल तो नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं, गुस्से को पी लेते हैं, गुस्से को दबाते हैं। और जब हम गुस्से को पीते हैं तो वो गुस्सा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो चाहे हम जोर जोर से बोलकर गुस्सा करें, चाहे हम गुस्से को दबाएं, दोनों तरह से ही गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है। तो दोनों तरह के लोग किस प्रकार के होते हैं, जो लोग गुस्से को व्यक्त करते हैं और दूसरे जो गुस्से को दबाते हैं, नहीं गुस्से को दबाते नहीं है, जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो एग्रेसिव लोग हैं वो जोर जोर से बोलते हैं और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो असर्टिव लोग होते हैं वो अपनी बात को सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। एग्रेसिव लोग दूसरे की भावनाओं की परवाह नहीं करते, उनके अनुसार काम होना चाहिए, चाहे गुस्सा करके ये काम कराया जाए लेकिन काम होना चाहिए। लेकिन जो असर्टिव लोग हैं वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराते और वो अपनी भावनाओं की जिम्मेवारी खुद लेते हैं कि मेरी भावनाओं के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, दूसरे का उसमें कोई दोष नहीं है। एग्रेसिव लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे आपको बताया एक बार ऐसे ही एक सैनिक था जो युद्ध में विजय पाकर लौट रहा था, तो रास्ते में एक जैन टेम्पल था। जापानीज जो होते हैं, जापानीज वो जैन मेडिटेशन करते हैं, तो वहां पर वो मंदिर था, वो मंदिर के अंदर गया, उसने सोचा मंदिर है तो मंदिर में जाकर के दर्शन करता हूं। तो वो संत, जैन संत जो थे वहां पर, उनको देखा उसने, तो उसके मन में एक सवाल था बहुत पहले से, तो उसने सोचा पूछ लेता हूं। तो गया उनके सामने और कहा कि मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है। तो वो जैन संत ने देखा कि ये जो बात कर रहा है वो बहुत अहंकार से कर रहा है, क्योंकि वो युद्ध में विजय पाकर लौटा था, तो उसी तरह से वो अपने सैनिक के रौब से जो है वो बात कर रहा था, तो उनको वो पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला उसको लगा कि ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसने म्यान से तलवार निकाली और उनकी गर्दन पे रख दी। तो जैसे ही गर्दन पे तलवार रखी, वो संत ने बोला यही नर्क है। तो उसको समझ में आया, उसने तुरंत अपनी तलवार वापस म्यान में डाली, तो उन्होंने कहा यही स्वर्ग है। तो समझ में आ गए, जब हम एकदम गुस्से में आकर के व्यवहार करते हैं तो हम अपने घर को, अपनी स्थिति को नर्क जैसा बना लेते हैं, और जब हम शांति से व्यवहार करते हैं तो वही स्थिति स्वर्ग जैसी है। और जो असर्टिव लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को जरूर बताते हैं लेकिन शांत और सहज भाव से बताते हैं। एग्रेसिव लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी कीमत पर मुझे सफलता मिलनी चाहिए, बाय हुक और क्रुक, जो भी करना पड़े, मतलब मुझे सफल होना है। लेकिन जो असर्टिव लोग हैं वो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और फिर दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी शरीर की स्थिति क्या होती है हम सब जानते हैं, गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, कहते हैं चेहरा तमतमा जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, जब हम जोर से बोलते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो सारा मांसपेशियों की तरफ आ जाता है और ब्रेन की तरफ हमारा ब्लड जो है वो कम होने लगता है, तो इसीलिए ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मारने पीटने के लिए अपने आप हाथ चलने लगते हैं, मुट्ठियां बन जाती हैं, पसीना आता है, सांस तेज से चलने लगती है, और क्रोध के बाद क्या होता है, पश्चाताप होता है और शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम ऐसा काम कर चुके होते हैं तब तक जो बिल्कुल करने जैसा नहीं होता। क्रोध के हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं ये बाह्य स्थिति है, और हमारे जो भीतर के अंग हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं, तो उसमें सबसे बुरा असर हमारे दिल पर आता है, हार्ट पर आता है, क्योंकि गुस्सा एक प्रकार का तनाव है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारे शरीर में कैटाकोलामींस बनते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ये कैटाकोलामींस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो हार्ट की खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, अगर किसी के ब्लॉकेजेस हैं पहले से तो हार्ट को ब्लड कम मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, उसकी वजह से एंजाइना हो सकता है, कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इसीलिए जिनको हार्ट की बीमारी होती है उनको डॉक्टर कहते हैं आप गुस्सा नहीं करो, आप स्ट्रेस में नहीं रहो, अपनी रिलैक्स तरह से लाइफ को जियो। हालांकि डॉक्टर ये नहीं बता पाते कि हम कैसे रिलैक्स हैं, लेकिन हाँ वो ऐसे कहते हैं जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं। एक बार ऐसे ही एक वीआईपी पेशेंट था, उसको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लाए उनको और वहाँ कोरोनरी यूनिट में रखा उनको। लेकिन नर्स जो थी वो दूसरे पेशेंट में बिजी थी, तो उनके पास आने में उसको कुछ समय लग गया। तो जैसे ही नर्स उनके नजदीक आई तो तुरंत उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं इतनी देर से अस्पताल में आया हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। और गुस्सा किया तो क्या हुआ, जो माइल्ड अटैक था वो मैसिव अटैक में बदल गया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी फिर उनको बचा नहीं पाए। तो इसीलिए गुस्से का असर हमारे हृदय पर बहुत अधिक होता है। पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की जो है वो 3 गुना कम हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन पर इसका असर आता है, खून की नलियां जो ब्रेन की हैं वो बहुत बारीक होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कहा सर्कुलेशन कम होता है ब्रेन में भी, और उसके कारण हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की शक्ति, उस पर असर आता है। तभी हम कहते हैं हमारा विवेक जो है वो काम नहीं करता है उस समय। और कई बार अगर अधिक आयु है और ये हार्ड है ब्लड वेसल्स, वैसे तो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए कोई भी अगर उनके ऊपर प्रेशर आता है तो उसको झेल लेते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड वेसल्स हार्ड हो चुकी हैं, अधिक आयु में ऐसा होता है, तो फिर कई बार वो रप्चर भी हो जाती है। रप्चर होती है तो ब्रेन में हैमरेज हो सकती है, और उसका असर कई बार ये भी हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए। पैरालिसिस माना लकवा जो हो जाता है, हालांकि रेयर है लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो तनाव में आ जाती हैं, और जब मांसपेशियां तनाव में आती हैं, सिर दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कई प्रकार के दर्द हो सकते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, है ना, कोरोना के बाद इम्यूनिटी शब्द सब जानते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी कोरोना से हम बच सकते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि शरीर में स्टेरॉइड्स बनते हैं। स्टेरॉइड्स भी सबने कोरोना के टाइम बहुत सुना होगा कि इलाज में क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तब जान बचती है, लेकिन वास्तव में वो हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली चीजें हैं। तो शरीर में स्टेरॉइड बनते हैं जब हम ज्यादा गुस्से में होते हैं या तनाव में होते हैं, और इसके कारण हमारी आंतों पर भी असर आता है, यानी हमारी डाइजेस्ट की जो पावर है वो कम होती है, और एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो भी हो सकती है। मानसिक प्रभाव, ये शारीरिक प्रभाव थे, कुछ मानसिक प्रभाव भी हम महसूस करते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है, व्यक्ति निराश हताश हो जाता है, उसको टेंशन होता है, कई प्रकार की चिंताएं होती है, मन में बदले की भावना होती है। जिसके प्रति गुस्सा किया आपने उसके प्रति मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना, वैर की भावना, तो मन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है, और जब नेगेटिव माइंड सेट होता है तब हम कोई भी बुद्धि का काम नहीं कर पाते। यानी जो क्षमता से हमें अपना कार्य करना चाहिए उस क्षमता पर उसका प्रभाव आ जाता है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारी जजमेंट पावर पर असर आता है, और कई बार बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं हम। इस तरह का गुस्सा करने के बाद जो मन में नेगेटिव चलता रहता है, ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर प्लानिंग करते रहते हैं अब हम क्या करेंगे, अब क्या बताएंगे इनको, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा व्यवहार बिल्कुल दूसरों को एबनॉर्मल लगता है कि ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होना। इवन कई बार नींद में भी, सपने में भी वो ऐसे सपने देखते हैं, तो नींद में भी कई बार इस तरह का वो एक्शन करते हैं। गुस्से के जो प्रभाव हैं वो हमारे सभी क्षेत्रों पर पड़ते हैं, जहां हम कार्य कर रहे हैं, फैमिली पर तो होता ही होता है, लेकिन जहां हम कार्य करते हैं वहां पर यदि हम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, गुस्सा अगर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होता है। जो लोग हैं हमारे साथी हैं, कार्य के साथी हैं, वो हमसे दूरी बनाने लगते हैं, वो समझते हैं इनका भरोसा नहीं, ये कब गुस्सा करने लगेंगे, ये कब क्या बोल देंगे, कब हमारा अपमान कर देंगे, ना इनके नजदीक नहीं जाना चाहिए, और इससे हमारा जीवन स्तर प्रभावित होता है। कई बार हमारे लोग दुश्मन बन जाते हैं, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके बहुत दुश्मन होते हैं लोग, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके मन में कहीं ना कहीं वैर भावना होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो स्टबन होता है, यानी जिद्दी। जिद्दी माना अपने आप को ही राइट समझना, मैं जो किया बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही बताना चाहिए, ऐसा अपने आप को समझते हैं। गुस्से के जो सामाजिक प्रभाव हैं, आज हम देखते हैं समाज में कितनी हिंसा की घटनाएं होती हैं, कितने लोग एक दो को जान से मार देते हैं। आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, कोई ना कोई ऐसी दो चार घटनाएं होंगी ही होंगी, रोज होती हैं, किसने किसको, इवन परिवारों में ही, फैमिली में ही, आपस में ही कभी पति पत्नी कर देते हैं, कभी कोई चाचा भतीजा होंगे, कोई सास बहू होगी। तो जो भी गैर सामाजिक गतिविधियां होती हैं, यहां तक कि जो अपहरण की घटनाएं होती हैं, या कोई किसी को धमकी देता है, कई बार जान से मारने की धमकी देते हैं, तो उसके मूल में क्या है, गुस्सा है। बिना गुस्से के ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। जो भी युद्ध और आतंकवाद है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका कारण भी क्रोध है। स्ट्राइक्स करते हैं लोग, हड़ताल करते हैं, तो गवर्नमेंट से गुस्सा है। जब हम सिस्टम से, मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं, जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर वो स्टाफ स्ट्राइक करता है, तो कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं, तो फिर ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हम जो सरकार के नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं, या जो भी जीवन मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम नहीं मानते हैं। गुस्सा क्यों आता है, सभी को मालूम है क्यों आता है, आप शेयर करेंगे किन कारणों से हमें गुस्सा आता है। गुस्सा तो सभी को आता है ना, हमसे पूछा तो सभी ने माना कि हमें गुस्सा आता है। तो कब आता है गुस्सा, सबसे जो मुख्य कारण है, 70% गुस्सा जो लोगों को आता है, मैंने कहा और इन्होंने माना नहीं, क्यों नहीं माना। अच्छा, और हमें जो पसंद नहीं वो करते हैं, और पर अगर हो जाती है तो फिर गुस्सा क्यों आना चाहिए, हो तो रही है ना, चाहे इस तरीके से हो चाहे उस तरीके से हो। हाँ, कभी कभी आता है। और जनरेशन गैप, बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, वही मतलब हुआ ना कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, ये आज के बच्चे देखो, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, ये आज के बच्चे क्या करते हैं। हाँ, अच्छा, और अपने आप को राइट समझना और दूसरे को गलत समझना। हाँ, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, जो भी कायदे हैं, चाहे वो सिस्टम के हैं, जहां भी वर्क प्लेस पर कोई ना कोई होता ही है, हर एक स्थान के कायदे होते हैं, अगर कंपनी के, तो अगर कोई भी उन रूल्स का उल्लंघन करता है, झूठ बोलता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता हमको कोई झूठ बोलता है, तो पर कई बार ऐसा होता है खुद झूठे होंगे लेकिन दूसरे का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे भी होते हैं और मेरी इच्छा के बाद, मेजॉरिटी में गुस्से का कारण यही होता है। तो फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ छोटे कारण, कुछ बड़े कारण जो भी हैं। Someone borrows your things without your knowledge. आपकी कोई चीज किसी ने आपको बिना इजाजत के यूज कर ली, गुस्सा आएगा। मेरी चीज है और मेरे बिना पूछे कैसे हाथ लगा दिया इसको। People make jokes about you. आपका मजाक उड़ा रहे हैं और चार लोगों के सामने आपका मजाक उड़ा रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा? या फिर आपके ही दोस्तों के सामने आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी नीचा दिखा रहे हैं, आपकी कमियां निकाल रहे हैं, आपको दोषी बता रहे हैं। आपने जो नहीं किया, जो गलती आपने नहीं की, उसके लिए आपको ही कहा जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ही कहा जा रहा है। वो डंपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाई सुपीरियर्स, यानी जो आपके अधिकारी हैं, पहले ही आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास बहुत काम है, ऊपर से और आपको काम दिया जा रहा है, तो क्या होगा? घर में भी ऐसा होता है, पहले ही इतना काम है, ऊपर से और काम बता रहे हैं। Someone spoils your work, आपने काम किया और किसी ने उस काम को बिगाड़ दिया। When the bus and train is late, आप जाते हैं स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, पता चलता है कि ट्रेन 2 घंटा लेट है, अब हमको उसके अलावा कोई चारा नहीं कि बैठकर इंतजार करो। Being given wrong directions, आप किसी से पता पूछते हैं कोई स्थान का, आपको गलत गाइड कर देते हैं और आप घूमते रहते हैं, आप फिर उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक में फंसना, बड़े शहरों में ये बहुत कॉमन है। तो कुछ तो धीरज रखते हैं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही सिस्टम को कोसते रहते हैं। अभी अभी हम आए रास्ते में, नीचे अपना कैंपस है शांति वन, वहां से अभी हम आ रहे थे, इतना ट्रैफिक था आज रास्ते में, वो शायद दिवाली के कारण होगा आना जाना, तो 15 मिनट लेट देरी इसी वजह से हुई। तो लेकिन मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि मैं शांति से हूं या नहीं। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे, तो पहुंच ही गए। हाँ, योर फ्रेंड्स गो ऑफ विदाउट यू, आप मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बनाते हैं और आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपके दोस्त आपको छोड़कर चले गए। अब क्या क्या फीलिंग्स जनरेट होती हैं? तो जब हम ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे होते हैं तो हम बहुत अधैर्य हो जाते हैं, यानी खासकर जब हमें जल्दी पहुंचना है और किसी काम के लिए, माना कोई मीटिंग है हमारी या कोई ऐसा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी या प्लेन छूट जाएगा, कुछ ऐसा है जो अर्जेंट है और बार बार हमें रेड लाइट मिल रही है, तो क्या होता है, हम बहुत अधैर्य हो जाते हैं। हम टीवी चला रहे हैं और टीवी रिमोट काम ही नहीं कर रहा है, तो चिड़चिड़ापन आता है उस समय, रिमोट कोई कई लोग उठा के फेंक देते हैं। अगर हमारी इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही है और हार गई, क्या हाल होता है? बहुत गुस्सा आता है टीम के ऊपर, ऐसे लगता है जैसे हमारा देश ही हार गया हो, टीम क्या हार गई, हमारा देश ही हार गया हो। अगर हम कहीं जाते हैं और कोई हमारी उपेक्षा करता है, हम गए किसी मेहमान के यहाँ या किसी रिश्तेदार के यहाँ, हम गए और उन्होंने हमारे को सम्मान नहीं दिया, हमारी उपेक्षा की, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तब हमें अंदर से कैसा फील होता है, उसको कहते हैं अपमानजनक फीलिंग आती है हमें। अगर कोई लेट आता है तो हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं उनको, ना सेल्फ राइटियसनेस, जस्टिफाई करना माना अपने आप को हम राइट सिद्ध करके बताते हैं कि आप गलत हो और हम राइट हैं। 4 प्रकार का गुस्सा हम करते हैं। लाइन इन वाटर, पानी पर लकीर के समान गुस्सा होता है, यानी पानी पर लकीर कभी ठहरती नहीं है, आपने लकीर बनाई और तुरंत चली गई, ऐसा गुस्सा होता है माँ का या कभी कभी गुरु का, क्योंकि माँ की बच्चों के प्रति सदा शुभ भावना या प्यार ही होता है। अब बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं या कहना नहीं मान रहे, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण गुस्सा करती है, लेकिन तुरंत फिर रियलाइज भी कर लेती है और उससे ज्यादा प्यार फिर बच्चों को देती है, तो माँ भी भूल जाती है और बच्चे भी भूल जाते हैं। तो आया गया गुस्सा ऐसे होता है, आया और खत्म। लाइन इन सैंड, रेत पर लकीर के समान, रेत पर लकीर कुछ घंटों रहती है। तो ये गुस्सा होता है परिवार में, जब मेंबर्स में आपस में कोई बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है, पति पत्नी में नाराजगी हो गई, सास बहू में हो गई, अब साथ में ही रहते हैं ना भाई बहन, ऐसे बहुत समीप संबंध, तो फिर काम तो नहीं चलता है, एक दो के लिए कुछ ना कुछ हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, तो कोई ना कोई झुक जाता है, और जब झुक जाते हैं सॉरी बोल देते हैं तो बात खत्म हो जाती है और कुछ घंटों में सब नॉर्मल हो जाता है। मिट्टी पर लकीर के समान, मिट्टी पर जो लकीर होती है वो कुछ दिनों तक रहती है, तो ऐसा गुस्सा जो होता है वो रिश्तेदारों में, जो हमारे संबंधी हैं वो किसी कारण से मानो उनसे हमारी नाराजगी हो गई, तो अब रोज तो नहीं मिलते हैं, तो जब वो अगली बार मिलेंगे किसी अवसर पर और तब हम अपनी गलत फहमी दूर कर पाएंगे तब सब कुछ नॉर्मल होगा, तो वो कुछ दिनों तक, कई दिनों तक चल जाता है। लाइन ऑन रॉक, चट्टान पर लकीर, जो चट्टान पर लकीर होती है वो अमिट होती है, कभी भी वो मिटती नहीं है, तो किसी किसी के प्रति, हालांकि ऐसा कम होता है लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति कई बार ऐसा होता है जिनके प्रति मन में वैर भाव जिंदगी भर बना रहता है, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं उनके आगे, और यहां तक कि हमारी पीढ़ियां भी निभाएंगी उसे, हम तो क्या हमारी पीढ़ियां भी नाराज रहेंगी, ऐसा भी होता है, तो हम समझ सकते हैं हम कैसा गुस्सा करते हैं, कौन से प्रकार का गुस्सा हमें ज्यादा आता है। तो जो भी गुस्से के कारण हमने समझे, अगर हम उनका निवारण समझ लेते हैं कैसे हमें उसका निवारण करना है, तो अपने गुस्से को हम कम कर सकते हैं। हम कहेंगे एकदम ही गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन गुस्सा आए और उसे हम कंट्रोल कर पाए, उसे हम मैनेज कर पाए, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसा आप सभी ने बताया कि ज्यादातर हमें गुस्सा कब आता है, जब लोग हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। तो यहां हमें क्या समझना पड़ेगा, यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं, कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं है। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वैसे ही सोचता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है, तो हम उनको भी समझें पहले कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे बात को, और हम जिनसे अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, मानो मेरा स्टाफ है जहां हम कार्य करते हैं, वो हमारे कार्य के साथी हैं या हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हम कहें, या हमारे फैमिली मेंबर हैं, 10 में से 9 बार वो हमारी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, कभी एक बार ही ऐसा होता है जब वो समझते हैं वो राइट हैं और आपको उनकी बात समझनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही राइट हों, हम भी कभी गलत हो सकते हैं, तो फिर उनकी जो जेन्युइन बात है उन्हें हमें मान लेना चाहिए। पर होता क्या है, यहां हमें अहम आ जाता है कई बार, अहम आने के कारण उनकी राइट बात भी फिर हम नहीं मानते हैं और उसकी वजह से फिर हम गुस्सा करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये है आपसी समझ, जितनी हमारी आपसी समझ होगी उतना हमें गुस्सा कम आएगा। दूसरों को काम कराने के लिए हम गुस्सा करते हैं ना, कंट्रोल करना, माना हम ये सोचते हैं कि बिना रौब दिखाए, बिना गुस्से से तो लोग काम ही नहीं करते हैं आजकल, और हम काम कराने के लिए गुस्सा तो कर लेते हैं लेकिन परिणाम क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुन लेगा, क्योंकि उनको भय होता है तो वो आपको कुछ जवाब नहीं देंगे, खासकर अधिकारी के सामने, उनको पता है कि इसका भविष्य परिणाम बुरा हो सकता है तो चुप रहेंगे, लेकिन उनके मन की भावनाएं क्योंकि बदल जाती हैं, जैसे ही मैंने गुस्सा किया उसके मन की भावना मेरे प्रति नेगेटिव हो गई, तो वो दिल से काम नहीं करेंगे, काम करेंगे जरूर दिल से नहीं करेंगे, इसलिए जैसा काम हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा। दूसरा, वो अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं माना जब भी मौका मिले इनके लिए समस्या पैदा करनी है, तो जैसे ही उनको वो अवसर आएगा तुरंत वो हमारे लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेंगे तो उसके दूरगामी जो परिणाम हैं, तो तात्कालिक परिणाम तो बहुत अच्छे होते हैं, हमें लगता है गुस्सा गया ना, देखो काम हो गया, लेकिन उसके जो दूर के परिणाम हैं वो कई बार हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। अगर हम प्यार से काम कराते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को हमारी बात एक बार में समझ ना आए, उसमें हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, लेकिन वो हमारा सम्मान भी करेंगे और दिल से काम करेंगे और जैसा काम हम चाहते हैं वैसा काम होगा। तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अब, क्योंकि हम अपना ये आदत बना लेते हैं कि हाँ बस हमें पता है, हम समझते हैं कि बिना गुस्से के काम ही नहीं चलेगा, तो उसको ही हम यूज करते रहते हैं। बच्चों के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, हम बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हाँ, या हम नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेलें या टेलीविजन देखते रहें या नेट पर लगे रहें, लेकिन बच्चे जो हैं वो सुन नहीं रहे, तो बिना गुस्से के बच्चे कंट्रोल में ही नहीं आते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हमारा कहना माने, तो हमें उनको कन्विंस करना आना चाहिए। आज क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, तो बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं कि वो अगर ऐसा करें तो क्यों करें और क्यों नहीं करें। अगर आप उनको समझा देते हैं तो फिर उसके बाद वो वही करते हैं जो आप चाहेंगे, लेकिन उसमें हमें धैर्य चाहिए, हम थोड़ा प्रेम से उनको समझाएं, उनको समय दें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास वो टाइम नहीं होता है और वो धैर्य भी नहीं होता है। आजकल सभी व्यस्त हैं, माता पिता व्यस्त हैं, अपने कार्यों में तो व्यस्त होते हैं, लेकिन जो समय मिलता है वो भी हम बच्चों को नहीं देते। वो समय हम कहाँ देते हैं, फोन पे दे देते हैं, फोन पकड़ते हैं और सोशल मीडिया जो भी है, जो भी मीडिया हम यूज कर रहे हैं उस मीडिया पर हमारा समय चला जाता है। वो बच्चे कोई भी सवाल पूछते हैं हमसे, हम कहते हैं अभी पता नहीं है आपको, हम बिजी हैं, तो वो जवाब देने का हमारे पास टाइम ही नहीं है उनको, उनको हम चुप भी गुस्से से ही कराते हैं। तो यहां पर अगर हमने ऐसा व्यवहार किया तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। जो हम आचरण करते हैं वही हम बच्चों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फिर थोड़े समय के बाद वो बच्चे आपका सामना करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ ये बच्चे, जो जनरेशन गैप की बात की ना आपने, तो ये ऐसा जवाब दे रहे हैं, ऐसा तो हमने इनको नहीं सिखाया। लेकिन सिखाया किसने है, किसने सिखाया, हमने ही सिखाया। क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं उनको, हमें अपनी बात मनवानी है तो हम कैसे कह रहे हैं उनको, जिस भाषा में जिस टोन में हम कह रहे हैं वही वो आपसे सीख रहे हैं। और अब वो सोचते हैं मुझे अपनी बात मनवानी है तो हमें भी इसी टोन में बात करनी पड़ेगी, तभी हमारे माँ बाप इस बात को मानेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारा कहना माने और जैसा हम चाहते हैं वैसे पढ़ें, वैसा ही करें, तो हमें भी वैसा ही फिर आचरण करना होगा उनके लिए, और समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, प्रेम से समझाना होगा। जब अन्याय होता है तब हम सोचते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय के लिए तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं बताया तो ये अन्याय चलता ही रहेगा। लेकिन वास्तव में गुस्सा करने से अन्याय खत्म नहीं होता है, और अन्याय बढ़ सकता है। उसके लिए हम संबंधित व्यक्ति से बात करें, और अगर कोई तीसरे व्यक्ति को भी हमें उसमें शामिल करना है तो हम शामिल करें। लेकिन अगर हम गुस्सा करेंगे तो अन्याय खत्म नहीं हुआ। फिर कोई झूठ बोलता है, जैसे कहा आपने, तो जो झूठ बोलता है वो उसकी आदत होती है, और अगर हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ेगा। हम उसे समझा सकते हैं कि अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपना विश्वास खो देंगे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये झूठ बोलते हैं तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, तो हम स्वयं सावधानी रखें। बाकी हम किसी के झूठ बोलने की आदत बदल सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं और जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस विषय पर मेरी पकड़ कमजोर है, हम उतना अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं या हमारा ज्ञान इसमें कम है। लेकिन अहम होता है तो हम अपनी हार नहीं मानना चाहते और उसके कारण हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए और हम ये तैयारी करें कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हमें डिस्कशन करना है तो हम पूरी तैयारी के साथ ही डिस्कशन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जो जीवन में असंतुष्ट होते हैं वो भी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ज्यादातर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हमें लगता है ये हमसे बेहतर हैं। अगर ये बेहतर हैं तो थोड़ा उनसे ईर्ष्या हो जाती है हमको, और जब ईर्ष्या होती है तो मन में ईर्ष्या जो है वो गुस्से का ही एक अंश है। तो वो व्यक्ति कभी भी हमसे कोई बात बोलेगा तो हम सही तरीके से उसको जवाब नहीं देंगे, थोड़ा गुस्से से ही उनसे बात करेंगे या चिढ़कर ही हम उनसे बात करेंगे। तो यहां हमें क्या समझना है कि इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है, हरेक के कर्म और प्रारब्ध अपनी अपनी है। कोई भी दो मनुष्यों के चेहरे नहीं मिलते, किन्हीं भी दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हम सबका अपना अपना पर्पस ऑफ लाइफ है। तो जो भी हमें भाग्य मिले हैं, हर एक को कोई ना कोई विशेषता मिली है इस दुनिया में, हर एक को कुछ ना कुछ प्राप्ति है और कुछ ना कुछ अप्राप्ति भी है। तो लेकिन जो मुझे प्राप्ति है, जो मेरा भाग्य है, उसे हम देखें तो हमें ये संतुष्टि जो असंतुष्टि है वो फील नहीं होगी। हम कहते हैं बीइंग इन्फीरियर इज डिफरेंट देन फीलिंग इन्फीरियर। कई बार हम कई बातों में किसी से कम हो सकते हैं पर जरूरी नहीं हम उसे महसूस करें। हम उसके बिना भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी देखने में बहुत साधारण थे लेकिन हम कहते क्या है उनको, महात्मा। तो उन्होंने अपने शरीर की कमी को, उनका छोटा सा कद था, पतला दुबला शरीर था, एकदम साधारण से दिखते थे वो, हाँ, लेकिन हमने इस उनको राष्ट्रपिता कहा क्योंकि उन्होंने कर्तव्य इतने ऊंचे और श्रेष्ठ किए, इतने महान कार्य किए उन्होंने देश के लिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को हम उस तरह से महसूस करें। हम अपनी कमियों को अपने भाग्य में भी बदल सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। ओवरवर्क्ड, कई बार बहुत काम हमने किया, हम थके हुए हैं और फिर किसी ने आकर के मुझे कुछ कह दिया, बस क्या होता है, अगर हम थके हुए हैं और किसी ने मुझे एक शब्द भी कह दिया, हमारी सहन शक्ति नहीं के बराबर होती है और हम गुस्से में शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर हमें ये समझना है कि हमने बहुत काम किया है, हम थके हुए हैं, इस समय भी अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मुझे शांति से ही जवाब देना है। सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इसीलिए उनकी सहन शक्ति कम होती है, और अगर हम उनको कोई छोटी भी बात कहते हैं तो उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। खासकर हमारे घर में अगर कोई वृद्ध आयु के हैं, 60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ज्यादातर वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, कोई ना कोई रोग भी उनको होता है, तो वो हमारी बातों पर जल्दी बुरा मान जाते हैं या जल्दी हमें वो चिढ़कर जवाब देते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम भी फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएं, लेकिन यहां हमारा फर्ज है कि हम उनकी स्थिति को समझें और फिर भी उन्हें हम सहयोग दें, स्नेह दें, सम्मान दें। वास्तव में वो हमसे सम्मान चाहते हैं तो उस अनुसार ही फिर हमें उनसे व्यवहार करना है। कोई हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं, ज्यादातर कोई हमारी कमी निकालते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है और इसीलिए हमें गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो हमारी निंदा करते हैं, वो हमें दुश्मन जैसे लगते हैं। पर कहा गया कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, तो निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? क्या कहेंगे, हो सकता है? कैसे? हाँ, आंगन कुटी छवाए, कबीर दास जी ने ऐसा कहा, हाँ, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुभाए। तो वास्तव में अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे और अगर हम रियलाइज करेंगे कि सामने वाला अगर कह रहा है, वो होता है कई बार बड़ा चढ़ा करके कह देते हैं किसी बात को, होती वो 1% ही है हमारे अंदर। जैसे आप काम पर जाते हैं, बिल्कुल पंचुअल हैं, एकदम राइट टाइम जाते हैं, आप अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, लेकिन कोई कारण से आप 2-3 दिन लेट हो गए, काम में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका क्रिटिक होगा ना, उसे तो मौका चाहिए होता है, वो तुरंत बोलेगा, अरे आपको पता नहीं है, हमेशा ऐसा करते हैं, ये है ही लापरवाह। अब वास्तव में आप ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे, कोई कारण बना और ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहां भी अगर हमारी थोड़ी कमी है, कहां लापरवाही हो रही है, तो हम अपने आप को ठीक कर लें, तो हमारी प्रोग्रेस होगी, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो हमारी कमी दूर हो जाएगी। पर कई बार अगर कोई ईर्ष्या के कारण दूसरों के सामने नीचा दिखाने के लिए हमारे लिए गलत बातें करते हैं, ऐसा भी होता है, और हमें लगता है नहीं, ये कमी मेरे अंदर नहीं है, नहीं है, तो फिर हम उसे अपने मन पर नहीं लें। अगर हम मन पर नहीं लेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये कमी मेरी है ही नहीं, ऐसे ही कहा जा रहा है, तो फिर उसे हम बिल्कुल भी मन पर नहीं लें। एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा थी, वो ट्रस्ट चलाती थी कौड़ियों के लिए, जो ये लेपर्स होते हैं, मरीजों की वो सेवा करती थी, तो उनको धन की आवश्यकता थी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई वो, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो जानता था मदर टेरेसा को और पसंद नहीं करता था वो जो कार्य करती थी। तो जैसे ही वो उनके पास आई और उनको पता चला कि ये किस इंटेंशन से आई है, उसने तुरंत उनको सुनाना शुरू कर दिया, तो वो शांत रही, सुनती रही। फिर जब उसने बोलना बंद किया तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तो आपने मुझे दिया, आप मेरे मरीजों के लिए क्या दे रहे हैं? ना, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बोला अभी, इनको अभी भी अपनी मरीजों की चिंता है। तो फिर उन्होंने बना के जो भी उनको देना था वो दिया उन्होंने, मतलब वो समझ गए उनकी भावना को और उनको दिया। तो उनके बोलने का क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि वो समझ गए कि ये जो भी बोल रहे हैं सब इनकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया, तो उनको अपमान भी नहीं लगा और उसका दुख भी नहीं हुआ, और जो काम उनको करना था वो काम भी उन्होंने अपना कर लिया। ऐसे ही फूड हैबिट्स, ज्यादातर जब हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमें गुस्सा ज्यादा आता है। तामसिक भोजन में मांसाहार या व्यसन लेना, जैसे शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो जिन लोगों को इस तरह के भोजन की आदत होती है, हम सब जानते हैं कि शराब पीने वाला जो है उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उनका स्वयं पर काबू नहीं रहता, और जरा सा भी कोई कुछ बोलेगा तो वो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे ही ड्रग्स लेने वाले भी, और मांसाहार में इसीलिए कहा क्योंकि मांस में हिंसा का तत्व है, तो जब कोई जानवर को काटा जाता है तो उसमें भय होता है, उस समय उसे पता चल जाता है कि मुझे मारने के लिए लाया गया है, तो उसके शरीर में जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से केमिकल्स निकलते हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। जैसे हमको टेंशन होता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे ही जानवरों के शरीर में भी वो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और वो उनके मांस में आ जाते हैं, फिर उन्हीं को काट दिया जाता है और फिर उसी मांस को पका करके खाया जाता है, तो वो जितने भी वो तत्व हैं वो ब्लड में आ जाते हैं, और जब वो ब्लड में आते हैं वो उत्तेजक हैं सारे। तो इसी के कारण जो मांसाहारी जातियां हैं वो ज्यादा सहनशील नहीं होती हैं, हिंसक होती हैं अधिकतर। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें जो पश्चिमी सभ्यता है वहां 80% लोग मांस खाते हैं। तो आप देखेंगे वहां लोग एक दो को ज्यादा सहन नहीं कर सकते, वहां पर फैमिली सिस्टम होता ही नहीं है। एक शादी होती है, दो चार साल साथ में रहते हैं, फिर तलाक हो जाता है, फिर दूसरी शादी होती है, फिर दो चार साल साथ में रहते हैं, फिर तलाक हो जाता है, ऐसे 3-4 शादियां उनकी होती हैं और बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रह सकते। भारत में 80% लोग वेजिटेरियन हैं और हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, पारिवारिक स्थायित्व है। अब हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ भी डाइवोर्स के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। नहीं तो हमारी कल्चर में शुरू से हम एक दो को सहन कर सकते हैं, एक दो को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो सात्विक भोजन रहा है और इसीलिए हमारी संस्कृति में माना गया जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का प्रभाव हमारे मन पर जरूर होता है। तो अगर हमारी फूड हैबिट्स को हम चेंज करते हैं तो उसका भी असर हमारे व्यक्तित्व पर आता है। फिर भी मानो किसी कारण से हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कुछ दूसरे तरीके भी हम अपना सकते हैं। अब ये तो है कि हमने गुस्से के कारण को समझा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर उसका निवारण हमने अपने मन में कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं ऐसा हमने अपने आप को समझाया। लेकिन दूसरे तरीके हैं जो हम इमीडिएट यूज करें, वो है पोस्टपोन करना। ये हम सुनते हैं नॉर्मली कि जब गुस्सा आ जाए उस समय चुप रह जाओ, उस समय मत बोलो, थोड़े समय के बाद आप बोल सकते हो, यानी आपने अपने गुस्से को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। तो जब हम उस समय शांत रह जाते हैं क्या फर्क होता है उसमें, कि जो हमारा आवेश है वो कम हो जाता है और फिर जो भी हम अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहते जरूर हैं लेकिन वो हम शांति से कहते हैं, अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो सामने वाला उसे स्वीकार करता है। कई बार ऐसे होता है कि हमें ये भी समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी भी गलती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो परमानेंटली जैसे वो गुस्सा पोस्टपोन हो गया। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों ही बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे, घर में रोज किसी ना किसी बात को लेकर कलह होती थी तो अशांति रहती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि मेरे घर में आज कथा है, आपको कथा पर आना है। तो उस दिन भी उनके घर में कोई बात हुई थी, उसका मन बहुत अशांत था, तो उसने सोचा थोड़ी देर कथा पे जाऊंगी तो शांति मिलेगी। गई वो कथा में, एक पंडित जी थे जो कथा कर रहे थे। कथा पूरी हुई तो उसने सोचा क्यों ना मैं पंडित जी से बात करती हूँ, हमारे घर की रोज की समस्या है। तो उसने बात किया पंडित जी से, तो पंडित जी ने सुनकर कहा कि मैं आपको हल बता सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा आप जो कहेंगे मैं करूंगी, उन्होंने कहा कुछ उपाय बताएंगे वो करूंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वादा करती हो तो ही मैं उपाय बताऊंगा। तो मैं वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उन्होंने पानी की एक बॉटल मंगाई, उसको दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो इसमें से कुछ घूंट पानी आप अपने मुंह में रख लेना और ये पानी मुंह में रहेगा जब तक वो बोल रहे हैं। तो वो समझ गई लेकिन अब वादा करवा लिया था उन्होंने, तो उसने पानी लिया और चुपचाप घर चली गई। अब वहां घर में तो रोज की बात थी, कोई बात हुई पति ने बोलना शुरू किया। अब आज वो वादा करके आई थी पंडित जी से तो उसने एक पानी मुंह में रखा, पानी मुंह में लिया तो अब बोल नहीं सकती थी, बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, तो चुप थी। तो पति को आश्चर्य हुआ ये तो आज चुप है, क्या हुआ है इसको, क्योंकि उनको भी सुनने की आदत थी, तो थोड़ा और जोर जोर से बोला लेकिन कुछ नहीं बोली वो क्योंकि पानी मुंह में था। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, उसने पानी मुंह में डाला, कुछ नहीं बोल रही थी। उनको लगा ये आज भी चुप है, इसने क्या अपने आप को बदल लिया है। हाँ, तो उन्होंने दूसरी तीसरी बार थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए किया, सचमुच बोलती कि नहीं बोलती, तो देखा कि नहीं बोलती है क्योंकि वो पानी मुंह में डाल लेती थी। तो जब उनको विश्वास हो गया कि ये बदल गई है तो फिर अपने ऊपर ध्यान गया कि मैं भी छोटी छोटी बातों में थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा करता हूँ, मुझे भी ध्यान देना चाहिए। और 2-4 दिन 10 दिन के बाद उनके घर में शांति होगी। अभी बहन बहुत खुश हुई कि जो पंडित जी ने कहा वो जरूर उस पाए ने काम किया है, मुझे उनको थैंक्स देना चाहिए। तो गई उनके पास, कहा पंडित जी मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ, आपने सचमुच मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उसने कहा पंडित ने कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था, वो आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ। देखो आप शांत रह गई तो आपको घर स्वर्ग जैसा लगा, सदा ही ऐसे करेंगे तो घर में सदा ही शांति रहेगी। तो कई भाई बहने कहते हैं बहन जी कहानी तक ठीक है, सचमुच कोई हम पर गुस्सा करता है तो हम चुप नहीं रह सकते, क्या कहेंगे, चुप रह सकते नहीं रह सकते। अच्छा हम चुप रहेंगे तो सामने वाला हमारी ही गलती मानेगा, हमें कमजोर समझेंगे। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं हम क्यों सहन करें, हम सहन करेंगे तो हमारी ही गलती मानी जाएगी। हाँ तो फिर हम टिट फॉर टैट पर आ जाते हैं कि भाई जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। हाँ लेकिन ये ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। अभी देखो क्या हुआ, वो चुप रही चार बार, हालांकि एक बार में कुछ असर नहीं हुआ, चार बार दस बार चुप रही तो पति का परिवर्तन हो गया ना। तो हम किसी दूसरे को तभी बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं जब हम खुद करके दिखाते हैं, और उसमें हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है तो वो हमें परिणाम दिखाई देते हैं। ये नहीं समझना है कि इसने मुझे गलत समझ लिया, लेकिन आपकी शांति का प्रभाव उस पर होना ही है, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन वो अंदर से इस बात को जरूर समझेंगे। इसलिए हम देखते हैं ना जितने भी महान पुरुष हुए, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे इस दुनिया में, चाहे वो क्राइस्ट थे, महात्मा गांधी थे, मदर टेरेसा थी, या सुकरात थे, या बुद्ध थे, महावीर थे, हम देखते थे उन्होंने समाज में बड़े बड़े परिवर्तन लाए। तो कैसे परिवर्तन लाए, उनके सामने ऐसी स्थितियां नहीं आई, ऐसा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, शांति, धैर्य, इन सब गुणों को अपने जीवन में प्रयोग किया और उसका प्रभाव उनके आसपास के समाज पर पड़ा और तब परिवर्तन आया। इसके लिए हम बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे ना, क्योंकि हमें अपनी शक्ति को तो बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इन बातों को नियंत्रित नहीं कर सकते या इन बातों को हम विजयी नहीं बन सकते। तो हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं अभी। दूसरा है अवेयरनेस। जितना हमें अवेयरनेस होती है, जैसे हम कहेंगे कि आज मानो किसी को ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर कहता है आपको नमक कम खाना है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे अपना नमक कंट्रोल करने की, क्योंकि नमक खाने से हमारी बीमारी बढ़ सकती है। एक डायबिटीज है, डॉक्टर कहेगा आपको मीठा कम खाना है, तो हो सकता है कि हम मीठा एकदम छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जब भी हम मीठा उठाएंगे तो हमें याद आएगा कि मीठा मुझे नहीं खाना है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलो जितना पहले खाते थे उससे आधा ही खाएंगे, पहले हम इस तरह से कोशिश करेंगे। या समझो कोई सिगरेट पीता है, लोग व्यसन भी लेते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो अगर वो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है तो व्यक्ति व्यसन लेगा ही नहीं, अगर नहीं है, जैसे एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, लंग का कैंसर हुआ, और उसने जो सिगरेट, जिस कंपनी की वो सिगरेट पीता था, उस कंपनी के ऊपर उसने केस कर दिया कि आपकी कंपनी की सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हो गया। तो कंपनी ने कहा कि हमने तो सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं इसको। तो उसने कहा ये जरूर लिखा है आपने, लेकिन आपने ये नहीं लिखा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आप पूरा कैंसर का खर्च देना है आपको। तो वो केस जीत गया, क्योंकि सचमुच नहीं लिखा था, पहले नहीं लिखा होता था सिगरेट के पैकेट पे कि इससे कैंसर होता है, और उनको पूरा इलाज का खर्च उसे देना पड़ा। बाद में जो है वो सिगरेट के पैकेट पर ये आने लग गया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो जब अमेरिका में लोगों ने ये पढ़ा, खासकर जो यूथ था, जिस यूथ को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जब उन्होंने ये पढ़ा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, 30% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो जब हमें ये जानकारी है कि ये हमारे लिए इतना हानिकारक है, अब जैसे क्रोध के लिए हमने समझा कि हमारे शारीरिक मानसिक सामाजिक तीनों ही प्रकार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुस्सा करते हैं हम अपने आप को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो फिर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 100% हम गुस्से पर विजय ना प्राप्त कर पाए, लेकिन फिर भी जितना हम अब गुस्सा कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं अरे गुस्सा आना तो नेचुरल है ना, गुस्से के बिना थोड़ी काम चलेगा, या गुस्सा तो हमारी पावर है ऐसा समझ करके हम चलते हैं, तो कम से कम वो जो हमारा विश्वास है, जो हम अपना एक मत बना करके चल रहे हैं, उसमें तो परिवर्तन करेंगे। और मानो कोई गुस्सा कर रहा है उसके सामने अगर हम हैं तो हमें वहां नहीं रहना चाहिए, अगर हम शांत रह सकते हैं तो रहे, नहीं तो उस स्थान से चले जाना चाहिए। जैसे बताया गुस्सा कंटेजियस होता है, लग जाता है, दूसरे ने किया हमारे ऊपर कब आ जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा। और फिर अभी जैसे हमने बात की कि हमें अपने सद्गुणों का विकास करना है, सहन शक्ति, धैर्य, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, रहम दिल, शुभ भावना रखना, ये सब एंटीडोट हैं। यानी गुस्से को जीतने के ये गुण हमारे लिए बहुत सहायक हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है हमें तो गुस्से हम कहेंगे कि गुस्सा आए ही नहीं, एक है गुस्सा आता है और एक होता है गुस्सा आए ही नहीं। तो इन गुणों का विकास जब हमारे अंदर होता है तो हमें गुस्सा आता ही नहीं है, जो हमें गुस्से पर विजय पानी पड़े। अब जैसे हम कहेंगे क्राइस्ट थे, उनको लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो कीले ठोक रहे हैं उनके शरीर पर और फिर भी वो कह रहे हैं कि हे पिता तू इन्हें क्षमा करना। तो हम समझ सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल पावर कितनी हाई होगी, कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उनकी जान ली जा रही है, लेकिन फिर भी वो उन्हें क्षमा कर रहे हैं। और यही कारण है कि जितने भी गिरजाघर हैं इस दुनिया में वहां ईसा मसीह की पूजा होती है। किसने उनको पूजनीय बनाया, ये गुण जो है वो व्यक्ति को इतना ऊंचा और महान बनाते हैं। तो जहां ये गुण है वो क्रोध का भाव ही प्रकट नहीं होता। जैसे महात्मा बुद्ध के सामने एक पागल हाथी छोड़ दिया, उस समय का जो राजा था वो उनसे बहुत जलता था और वो चाहता था कि किसी भी तरह से महात्मा बुद्ध को मार दिया जाए, और उसने उनको मारने के लिए पागल हाथी छोड़ दिया रास्ते में, जिस रास्ते से वो आ रहे थे। उन्होंने उस पागल हाथी को देखा, अपना रास्ता नहीं बदला, सिर्फ शांति से वो खड़े हो गए और वो पागल हाथी भी शांत हो गया। मतलब इतनी पावर थी उनके अंदर कि उनकी उस पावर से उन्होंने वो क्रोध नहीं किया किसने ऐसा किया और ये सब जो हम सोचने लगते हैं, लेकिन सिर्फ शांति से खड़े हुए और उनकी शांति से वो जो जानवर था वो भी शांत हो गया और उसने अपना रास्ता बदल दिया। कोई अगर हम गलती करते हैं मानो, तो अपनी गलती को अगर हम मान लेते हैं, उसको सिद्ध नहीं करते हैं, अहम होता है तो हम अपनी गलती नहीं मानते और उसको सिद्ध करने जाते हैं, फिर उसमें हम गुस्सा करने लगते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए, सिद्ध करने के लिए फिर हमें गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन गलती हुई, हमने सॉरी बोली, बात वहीं खत्म हो जाती है, बात बढ़ती ही नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि प्यार से कुछ काम नहीं हो पा रहा है, या वो अनुशासन जो हम चाहते हैं वो अनुशासन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा गुस्से की एक्टिंग कर सकते हैं। यानी अपनी फीलिंग्स को हम नेगेटिव बनाए बिना थोड़ा अपना ऑफिशियल रूप दिखा सकते हैं कि इस तरह से जो काम हो रहा है वो हमें पसंद नहीं है। खासकर वर्क प्लेस पर अगर हमें कभी जरूरत लगती है तो गुस्से का एक रूप, एक हाव भाव हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो सही मायनों में हम अंदर से गुस्सा नहीं कर रहे, हमारी फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं। इसके ऊपर पुराणों में एक बहुत अच्छी कथा आती है, वैसे तो एक सांप की कथा है, अगर आपने सुनी है, किसी ने, एक कोबरा गांव में निकला और उसने कुछ लोगों को काटा, और जब काटा तो लोगों की मृत्यु हो गई। तो गांव वाले लोग जो हैं वो बहुत डर गए कि गांव में एक ऐसा सांप है जिसको भी काटता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कोशिश करने लगे कि वो सांप जो है वो पकड़ में आए और उसको मार दिया जाए, लेकिन वो सांप जो था वो भी बहुत चतुर था, यानी वो पकड़ में नहीं आया गांव वालों के। तो वहां एक साधु आए, जब गांव में साधु आए तो गांव वालों ने अपनी समस्या उनको सुनाई। तो उस साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जो है वो सांप को वश करने का मंत्र जानता हूं, तो मैं सांप को वशीकरण मंत्र करके ऐसा कर दूंगा कि वो किसी को काटेगा नहीं। तो उन्होंने वो मंत्र से उसका आह्वान किया कोबरा का, और कोबरा उनके सामने आ गया और वो मंत्र से उन्होंने उसको बोल दिया कि कोई गांव वाले को वो नहीं काटेगा। तो वो सांप ऐसा ही हो गया। अब वो निकलता था बिल से, लेकिन अपना शिकार करने के लिए निकलता था, किसी मनुष्य को नहीं काटता था, लेकिन गांव वाले अभी भी चाहते थे कि इसको मार दिया जाए, तो वो शिकार नहीं कर पाता था। गांव वाले जो है उसके पीछे पड़ते थे, तुरंत वो बिल में घुस जाता था अपने। तो वो बहुत दुबला हो गया एकदम ऐसे शरीर पर, क्योंकि वो मारते थे कुछ कुछ तो घाव भी हो गए, तो मरने जैसी हालत में पहुंच गया। कुछ महीने के बाद वो साधु फिर आए, देखें अभी गांव की क्या हालत है, तो पता चला कि सांप ने किसी को भी नहीं काटा। फिर उन्होंने कोबरा का आह्वान किया मंत्र से, तो देखा कि वो तो बिल्कुल मरने जैसी हालत में है। तो उन्होंने पूछा उसको कि तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, तो उसने कहा आपने मुझे कहा किसी ने नहीं काटना, तो लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। तो उसने कहा मैंने जरूर कहा था किसी को नहीं काटना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि फन नहीं दिखाना, तुम अपना फन तो उठा सकते हो, फन उठाओगे लोग भाग जाएंगे, कोई भी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। तो कहने का भाव ये है, ये एक्टिंग करना, मतलब कि सचमुच वो गुस्सा नहीं, लेकिन एक जिसको आंखें दिखाना कहते हैं लोग, मुहावरे में प्रयोग करते हैं कि हाँ अपना थोड़ा सा रूप दिखा दिया वो, और उससे हमारा वो काम चल जाता है। फिर रीप्रोग्रामिंग करना, कई बार जो गुस्से के जो संस्कार हैं हमारे वो बहुत पक्के होते हैं, क्योंकि हम इतनी बार गुस्सा करते हैं, रोज करते हैं हम गुस्सा, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम गुस्सा नहीं करते। तो वो इतने पक्के संस्कार हैं कि हम कितना भी कोशिश करते हैं, समझो हम बहुत बार अपने मन को समझाते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये ऐसा नहीं कहना है, लेकिन फिर भी जब वो परिस्थिति पैदा होती है हम वहीं के वहीं होते हैं, तब फिर हम क्या करें। तो उसके लिए हमें रिप्रोग्राम करना है अपने मन को कि हम मेडिटेशन करें। आप सीख रहे हैं, आपने सीखा है राजयोग करना, तो राजयोग का अभ्यास हमने 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, आधा घंटा किया, जितना भी समय आप करते हैं, वो अभ्यास करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। तो जो भी हमारा एक नेचुरल बिहेवियर आता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो वहां हम अपने मन को अब ये थॉट्स देंगे कि भले ही कोई मेरे को झूठ बोलेगा, भले ही कोई मेरा कहना नहीं माने, भले ही कोई गलती करे, अब हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं जो हमें गुस्सा आता है, तो हम उनको विजुलाइज करते हुए सोचें कि ये चाहे बच्चे हैं वो, कि अगर वो बच्चे भी हैं कहना नहीं मान रहे, अगर वो नहीं मानेंगे कहना तो भी मुझे गुस्से से नहीं कहना है, मुझे अपनी बात को प्यार से कहना है, शांति से कहना है। ये मैं अपने आप को समझा रही हूं। अब हो सकता है कि मैंने समझाया और दूसरे दिन वही स्थिति पैदा हुई और फिर भी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन जो प्रोग्रामिंग हमने दी वो हमें याद आ जाएगी, और याद आते ही वो इंटेंसिटी कम होगी, पहले गुस्सा बंद हो जाएगा नहीं, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ, चौथी बार भी ऐसा हुआ, 10वीं बार तक हम जीत पाए। माना रोज हम अपने मन को प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, लेकिन जब 10वीं बार वो स्थिति हुई तब हमें पूरा याद है कि हमें प्यार से ही बात करनी है। तो अब हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन अब हम जो भी कह रहे हैं वो प्यार से कह रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपने संस्कार में परिवर्तन ला सकते हैं, खासकर जब हम योग अभ्यास करते हैं उस समय, क्योंकि ईश्वर की शक्तियां भी हमसे जुड़ जाती हैं, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये आपका भी जवाब है कि हमें पहले अपनी अंदर की शक्तियों का विकास करना है, और जब हम उनका विकास करते हैं, अपने उन गुणों का विकास करते हैं, तो फिर कोई कैसा भी बोल रहा है, कोई कैसा भी कर रहा है, हमें उस पर गुस्सा आता ही नहीं है, बल्कि और ही हम उनके प्रति रहम दिल होते हैं, वेल विशर होते हैं। और जो भी हम दूसरों के लिए करें वो निस्वार्थ भाव से करें। हम ज्यादातर अपेक्षा से करते हैं, मैंने इनके लिए किया इनको भी मेरे लिए करना चाहिए, फिर अगर वो हमें प्रतिउत्तर नहीं मिलता तो हमें गुस्सा आता है। पर जितना हम दातापन की भावना रखेंगे यानी देने की भावना रखेंगे, नॉर्मली आज का समाज क्या है, स्वार्थ आधारित समाज है। स्वार्थ आधारित का मतलब यही है कि हम सब कुछ जो भी करते हैं वो अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके करते हैं, और अगर हमारा वो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो गुस्सा आता ही आता है। अगर किसी से हम प्यार भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा पहले स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ के कारण ही हम किसी से प्यार कर रहे हैं। तो निस्वार्थ करना है, जो भी करें हम निस्वार्थ भाव से, यदि हम प्यार दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, हम सम्मान दे रहे हैं, हम उनसे वो अपेक्षा नहीं रखें मुझे देना है ये भाव है, तो भी क्रोध हमें आता ही नहीं है। लेकिन ये जो भाव हैं वो तभी हमारे विकसित होते हैं जब हम आध्यात्मिक होते हैं। जितना हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं उतनी हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स का विकास होता है। और गुस्से को जीतने के लिए निश्चित रूप से हमें दृढ़ निश्चय होना होगा। रोज हम अपने आप की चेकिंग करें, पहले थोड़ा तो एफर्ट हमें उसका करना ही होता है। अब मानो हमें गुस्सा दबाना पड़ता है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्थितियां ही ऐसी हैं, अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत हानि हो जाएगी। तो फिर अपनी भावनाओं को आप लिखिए, एक पेपर पेन लें और जो भी आपको अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आपकी जनरेट हो रही हैं उसको आप लिख लीजिए, और फिर भले फाड़ के फेंक दें या वो भगवान को समर्पित कर दें उसे, लेकिन आपने एक्सप्रेस कर दिया उसको, तो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, गेम्स खेलें, तो उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स बनते हैं, वो भी हमारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। हर दिन हमें फ्रूट्स खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ये जो हरी सब्जियां और फल हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी हमारे शरीर में जो भी हमारी नेगेटिव फीलिंग्स के कारण टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और एक हंसी की बात है कि आप अपना चेहरा दर्पण में देखें जब गुस्सा आता है, वो कैसा लगता है, कैसा लगेगा, असुर जैसा। हाँ, तो जैसे ही हमें लगेगा कि हम गुस्से में इतना बुरे लगते हैं, सबसे अच्छे कब लगते हैं हम, जब हम मुस्कुराते हैं। हाँ, तो जब हमें रियलाइज होगा कि गुस्से में हम इतने बुरे लगते हैं, हमारा गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। ऐसे एक पति पत्नी थे घर में, उनके घर में वॉल मिरर था, तो दोनों झगड़ रहे थे और झगड़ते हुए देखा शीशे की तरफ तो देखा हम कैसे लग रहे हैं लड़ते हुए, तुरंत उनका गुस्सा शांत हो गया। प्रेस योर चिन, ऐसे कहते हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, तो अगर आप अपने चिन को प्रेस करते हैं तो जॉ रिलैक्स हो जाता है, फिर आप चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल पाते, जो भी बोलेंगे शांति से बोलेंगे। कुछ स्लोगन्स याद रखें कि ठंडा लोहा ही गरम लोहे को काटता है, तो शांति में शक्ति है, क्रोध में शक्ति नहीं, क्रोध एक कमजोरी है। इसे हमें लगता है ना कई बार कि शांति कमजोरी है और क्रोध से हम अपनी पावर दिखाते हैं, पर वास्तव में शांति में शक्ति है। और हमेशा ये विश्वास करें, ये निश्चय रखें कि हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं, और जब हम ये निश्चय रखेंगे तब सचमुच हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं तो हम गुस्से के संस्कार को वास्तव में पक्का करते जा रहे हैं, और पक्का करते जा रहे हैं। और ये हमारा एंगर स्कोर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी गुस्सा तो करते हैं लेकिन किस लेवल का गुस्सा है हमारा, क्या सचमुच हमें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं लाएंगे तो वो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, तो ये स्कोर आप देख सकते हैं, इसमें 9 पॉइंट्स हैं। अगर आपके 36 नंबर हैं इसमें, 4 मार्क्स आते हैं हर एक में, तो फिर इसका मतलब आपको अपने लिए जरूर कार्य करना है, अपने गुस्से को कम करना है। और यदि आपके 9 नंबर हैं तो वो आपका मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है इसका मतलब आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं आता है, तो आप ये 9 पॉइंट्स चेक करें। आई एम क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है। आई हैव ए फियरी टेम्पर, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। आई एम ए हॉट हेडेड पर्सन, गुस्सा तो जैसे मेरे दिमाग पर ही सवार रहता है। आई गेट एंग्री बाई अदर्स मिस्टेक्स, दूसरे गलती करते हैं तो मुझे गुस्सा आता ही है। आई फील एनॉयड वेन आई एम नॉट गिवन रिकॉग्निशन फॉर डूइंग गुड वर्क, इतना अच्छा काम किया फिर भी किसी ने मुझे कहा नहीं, मेरी तारीफ नहीं की, मुझे बोला नहीं। वेन आई गेट मैड आई से नैस्टी थिंग्स, जब गुस्सा मुझे होता है तब मेरे मुंह से बकवास वाली भाषा निकलती है। नैस्टी माना जैसे मतलब इसका जो ट्रांसलेशन है वो इसको बकवास कहते हैं, माने ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इफ इट मेक मी फ्यूरियस व्हेन आई एम क्रिटिसाइज्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता हूं। व्हेन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड आई फील लाइक हिटिंग समवन, गुस्से में मुझे लगता है कि मैं इनको मार दूं। हाँ, कई बार लोगों के मन में ऐसा भी हो जाता है। आई फील इन्फ्यूरिएटेड व्हेन डू ए गुड जॉब एंड गेट ए पुअर इवैल्यूएशन, अगर मेरे अच्छे काम के लिए मुझे ठीक से पहचान नहीं मिलती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो आप चेक कर लें अपने आप को एक मिनट में। तो अभी लास्ट में हम एक कहानी से इसको पूरा करेंगे। एक बार एक राजा के दरबार में किसी ने हीरे भेंट किए, तो राजा ने जब हीरे देखे तो उसे समझ में नहीं आया कि असली हीरे है या नकली हीरे, तो उसने अपने दरबारियों को दिखाया, तो दरबारियों ने भी देखा तो उनको भी समझ में नहीं आया कि असली हीरे हैं या नकली हीरे हैं। तो राजा ने फिर अनाउंस किया कि जो भी ये बता देगा कि असली हीरे हैं नकली हीरे हैं उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाए, पर एक अंधा आया, उसने कहा महाराज मैं बता सकता हूं कि असली हीरे नकली हीरे। तो राजा ने कहा तुमको तो दिखाई भी नहीं देता है, तुम कैसे बताओगे। उसने कहा मैं बता सकता हूं, आप मुझे हीरे दे दीजिए और एक दरबारी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं सूर्य की धूप में मतलब सूर्य की रोशनी में मैं इन हीरों को रखूंगा। तो उसने वो हीरे रखे वहां और फिर एक एक हीरे को उठाता था अपनी हथेली पर रखता था और उसने अलग कर दिए कि कितने हीरे असली हैं कितने नकली हैं। तो राजा ने कहा कैसे किया तुमने अलग। तो उसने कहा महाराज जो असली हीरे होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, जो नकली हीरे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में गर्म हो जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, क्या बनना है, असली हीरा। तो जो असली हीरे होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, तो हम ऐसे हीरे बने जिनकी नजर जो भगवान की नजर में आए। तो यहां से हम ये लक्ष्य लेकर के जाएं कि हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, और अगर क्रोध पर आपने विजय पाली तो ये अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। ओम शांति।